पृष्ठ संख्या 93 अध्याय 6 पुरावशेषों का परिरक्षण। उत्खनन के समय विविध प्रकार के पुरावशेष एवं पुरानिधियां पुरातत्वविदों को प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं का परिरक्षण कई दृष्टियों से अत्यंत आवश्यक होता है। टीलों के गर्भ में दबी हुई पुरानिधियां मिट्टी की नमी, अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल्स एवं दबाव आदि से प्रभावित होती हैं। अपनी प्राकृतिक अवस्था में न रहने के कारण ही पुरावशेषों के परिरक्षण की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। बाह्य वातावरण के साथ पुरावशेषों का सामंजस्य बैठाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। कुछ पुरावशेषों को साफ पानी से धोने मात्र से ही परिरक्षण संभव है। उत्खनन से प्राप्त अधिकांश पुरानिधियों के परिरक्षणार्थ उनके ऊपर रासायनिक विलेपन की प्रायः आवश्यकता होती है। पुरावेद जब प्राचीन काल की दबी हुई वस्तुओं को प्राप्त करता है तो उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर वह प्राप्त पुरावशेषों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। यदि पुरावशेष सही सलामत न रह जाए, यदि साक्ष्य ही नष्ट हो जाए, तो पुरावेद के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव नहीं तो अपेक्षाकृत कठिन अवश्य होगा। इसलिए उत्खननकर्ता को भी रसायन शास्त्र का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अच्छा तो यह हो कि यदि उत्खनन कार्य के समय रसायन शास्त्र की व्यवस्था की जा सके। सभी समुन्नत देशों में उत्खाता को आवश्यक सहायता एवं परामर्श देने के लिए पुरावित रसायनज्ञ पुरास्थल पर ही साथ साथ विद्यमान रहते हैं। उत्खनन क्षेत्र के पास ही पुरातत्व की छोटी रसायन प्रयोगशाला की व्यवस्था की जा सके जो अति उत्तम हो। पुराविद एवं पुरा रसायनज्ञ को इस बात का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों को यथासंभव ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा जाए। यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो उनका महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित रखा जाए। पुराविद सिलिकायुक्त जिन पुरावशेषों को बचाने की आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं उनमें मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मुहरे, कांच एवं चूने के पत्थर आदि की बनी हुई सामग्री प्रमुख हैं। धातु की बनी हुई पुरानिधियों में लोहा, तांबा, चांदी, सोना एवं कांस्य की बनी हुई चीजों की गणना की जा सकती है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में लकड़ी, हड्डी, हाथी दांत एवं सूती, रेशमी, पृष्ठ संख्या 94, कपड़े तथा चमड़े आदि से निर्मित पुरावशेष भी मिलते हैं। अत्यंत भंगुर होने के कारण इनके परिरक्षण के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। पुरावशेष एवं पुरानिधियों के परिरक्षण के लिए किसी उत्खनन स्थल पर अधोलिखित सामग्री की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। आश्रित जल, डिस्टिल्ड वाटर, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पॉलीविनाइल एसिटेट, अमील एसिटेट, एसीटोन, अमोनिया, कास्टिक सोडा आदि, बीकर, परख नली, नपना, गिलास, तांबे एवं पीतल की पतली छड़े, तांबे की तार, कांच की बोतलें, चम्मच, चाकू, कैंची, तार एवं बाल के बने ब्रश, खुरचने की छुरियां तथा ट्रे आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। इनके अलावा पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि अन्य जरूरी चीजें हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुरावशेषों के परिरक्षण के संबंध में संक्षेप में विचार किया जा रहा है। मिट्टी की बनी वस्तुएं सुदीर्घ काल तक जमीन के नीचे दबी पड़ी रहने के कारण मिट्टी की बनी हुई चीजें नमक अवशोषित कर लेती है। नमक को साफ करने के लिए इन्हें लवण रहित साफ पानी से धोना चाहिए। कम पके हुए मिट्टी के बर्तनों को पानी से नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे उनके टूटने की संभावना रहती है। किसी प्रकार मिट्टी के बने हुए चित्रित पात्र खंडों को पानी से धोने में निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण अभिप्रायों का संयोजन दो प्रकार से होता था, पकाने के पहले और पकाने के बाद। जिन चित्रों का संयोजन पकाने के पहले किया जाता था धुलाई के दौरान उनके छूटने की संभावना बहुत कम रहती थी। जो चित्रण अभिप्राय मिट्टी के बर्तनों को पकाने के बाद किए जाते थे वे थोड़ी सी रगड़ खाने पर ही छूटने लगते हैं, इसलिए ऐसे पात्रों की सफाई में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती थी। मिट्टी की वस्तुओं को तब तक धोते रहना चाहिए जब तक उनके अंदर नमक की मात्रा बिल्कुल खत्म न हो जाए। मृण्मय पुरावशेषों से नमक की मात्रा खत्म हुई या अथवा नहीं, यह देखने के लिए एक विशेष प्रकार का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण को सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण के लिए कांच की दो परख नलियों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से एक परख नली में स्वच्छ जल रखा जाता है तथा दूसरी में पदार्थ की धुलाई में प्रयोग किया हुआ जल। प्रत्येक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट के घोल की 10 बूंदें डाल दी जाती हैं। तत्पश्चात दोनों परख नलियों को हिलाना चाहिए। स्वच्छ जल में कम एवं नमकीन पानी में अधिक दुधियापन हो गया आपका। पाषाण निर्मित पुरावशेष सिलिका बालुकाश्म में पाषाण पर निर्मित पुरावशेषों के परिरक्षण के लिए कागज की लुगदी का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग की सामान्य विधि यह है कि साधारण कागज के टुकड़ों को 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा जाता है। इसके बाद पानी से निकालकर कागज को किसी लकड़ी के से कूट कर लुगदी बना ली जाती है। मूर्ति आदि पाषाण निर्मित पुरावशेष के ऊपर लगभग 2-3 सेंटीमीटर मोटा लेप कर दिया जाता है। सूखने पर पहले वाले लेप को धोकर दूसरा लेप लगाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक पृष्ठ संख्या 96 की संबंधित पुरावशेष से नमक का अंश समाप्त नहीं हो जाता है। नमक का अंश समाप्त हुआ अथवा नहीं, इसका पता लगाने के लिए सिल्वर लाइट्रेट के माध्यम से इस बात का परीक्षण किया जा सकता है। इस कोटि की पुरानिधि में जब नमक का अंश बिल्कुल समाप्त हो जाए तब साफ पानी से अच्छी तरह इसकी सफाई करके सुखा लेना चाहिए। संगमरमर सिलखड़ी एवं चूना पत्थर पर निर्मित पुरावशेष भी जमीन में दबे पड़े रहने पर अम्ल एसिड अवशोषित कर लेते हैं। ये पदार्थ पानी के संपर्क में बहुत जल्दी घुलने लगते हैं, इसलिए इनकी सफाई के लिए कैल्शियम सल्फेट के घोल का उपयोग किया जाता है अथवा सफाई के लिए टब में रखे गए पानी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक टुकड़ा डाल देना चाहिए। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस टब के तल में जम जाए तब टब के ऊपर से इस पानी का भी इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। धातु के बने हुए पुरावशेष उत्खनन के दौरान प्राप्त धातु निर्मित पुरावशेष भी प्रायः अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलते हैं। धातु की पुरानिधियों पर भी अनेक परिवेश एवं वातावरण का गंभीर प्रभाव पड़ता है। धातु की बनी हुई पुरानिधियों और पुरावशेषों के रासायनिक परिरक्षण के लिए रसायन शास्त्र का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए उत्खननकर्ता इन पुरावशेषों के परिरक्षणार्थ सामान्य प्रयोग तो स्वयं कर सकता है लेकिन इनकी समुचित सुरक्षा के लिए उन्हें पुरातत्व विभाग के रसायनज्ञ के पास यथाशीघ्र भेजने की व्यवस्था करना चाहिए। धातु निर्मित पुरावशेषों के परिरक्षण की सामान्य युक्तियां इस प्रकार हैं। तांबा, तांबे एवं तांबे के मिश्रण से बनी हुई पुरानिधियों को साफ करने के लिए एक विशेष प्रकार का रासायनिक घोल प्रयोग किया जाता है। यह घोल तैयार करने के लिए एक भाग टार्टरिक अम्ल टार्टरिक एसिड, एक भाग कास्टिक सोडा तथा 10 भाग स्वच्छ जल लेना चाहिए। तांबे की वस्तुओं को इस घोल में तब तक डुबोकर रखना चाहिए जब तक कि उनके ऊपर की हरी पपड़ी ग्रीन इनक्रस्टेशन खत्म न हो जाए। इसके पश्चात साफ पानी से भली भांति धुलाई करना चाहिए। अच्छी तरह साफ हो जाने पर विनाइल एसीटेट के 10% घोल का विलेपन करना चाहिए। लोहा, उत्खनन में लोहे की बनी हुई वस्तुएं प्रायः बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलती है, इसलिए इनके परिरक्षण में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। लोहे की बनी हुई चीजों के ऊपर जंग डस्ट की मात्रा पर्याप्त रूप में दिखलाई देती है। उत्खनन में जब भी लोहे के उपकरण प्राप्त हो तो उन्हें साये में सुखाना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर नए सिरे से जंग लगना न प्रारंभ हो। यदि पृष्ठ संख्या 97 लोहे का कोई उपकरण ऐसे क्षेत्र से मिले जो पानी में डूबा रहा हो अथवा दलदल के रूप में परिवर्तित हो गया हो तो उसे अविलंब पुरातत्व के रसायनज्ञ की प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। जब तक उसे प्रयोगशाला में न भेजा जा सके तब तक उसे सोडियम कार्बोनेट के 2% घोल में रखा जा सकता है। इस क्रिया के फलस्वरूप उस वस्तु में स्थायित्व बना रहेगा। लोहे के अंदर क्लोराइड का असर खत्म करने हेतु उसे जिंक की शीट से ढक दिया जाता है अथवा अशुद्ध जल में काफी देर तक खोलाया जा सकता है। इन दोनों क्रियाओं को प्रारंभ करने के पहले इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि संबंधित वस्तु अच्छी स्थिति में है और उसके अंदर लोहे की पर्याप्त मात्रा विद्यमान है। लोहे की वस्तुओं पर क्लोराइड का प्रभाव खत्म करने के लिए सिल्वर ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है कि सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग लौह पुरावशेषों के संबंध में उतना सफल नहीं रहा है जितना कि कांस्य उपकरणों के लिए रहा है। सिल्वर ऑक्साइड का विलेपन लौह उपकरण के समग्र धरातल पर करना चाहिए। लोहे के ऐसे उपकरणों को जिन्हें जंग ने बुरी तरह से चाट डाला हो उनके ऊपर किसी तरह का विलेपन कारगर न होगा। उन्हें पुरातत्व की निकटस्थ प्रयोगशाला में भेजने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था न की जा सके उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। चांदी उत्खनन के दौरान चांदी की बनी हुई चीजें भी प्रायः विरूपित ही मिलती हैं। चांदी के ऊपर तांबे लोहे एवं कांस्य धातुओं की तुलना में विरूपण की मात्रा बहुत ही कम होती है। कभी कभी चांदी की बनी हुई सामग्री के ऊपर जमी काई अथवा अन्य विदूषणों को यांत्रिक प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं को रखने के विषय में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहां उन्हें रखा जाए वह क्षेत्र गंधक से रहित हो। चांदी की बनी वस्तुओं के ऊपर विशेषकर उन वस्तुओं के ऊपर जो एक लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर दबी रही हैं, सिल्वर क्लोराइड प्रायः जम जाता है। यद्यपि इससे चांदी की बनी वस्तुओं के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी देखने में सुंदर नहीं लगती है, इसलिए उसे हटाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा चांदी के सिक्कों आदि पर यदि कोई अभिलेख लिखा हुआ हो तो उसकी भी जानकारी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि इस सिल्वर क्लोराइड को हटाया न जाए। सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले इस बात की पूरी जांच कर लेना चाहिए कि चांदी की बनी हुई वस्तुओं में चांदी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है कि नहीं, अन्यथा बचे खुचे पदार्थ के भी नष्ट होने का भय रहता है। चांदी एवं चांदी के मिश्रण से बनी चीजों को 3% गंधक के तेजाब से तब तक धोना चाहिए जब तक लाल चकत्ते साफ न पृष्ठ संख्या 98 हो जाए। इसके पश्चात उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ करना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड को हटाने के लिए अमोनियम के फाहे का प्रयोग भी किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इन चीजों को अमोनियम क्लोराइड के घोल में भी कुछ समय के लिए डाला जा सकता है। एसिटिक एसिड के हल्के घोल से भी चांदी के बने हुए पुरावशेषों को साफ किया जा सकता है। रासायनिक विलेपन एवं घोल से सफाई करने के पश्चात चांदी के पुरावशेषों की साफ पानी से धुलाई अवश्य कर लेना चाहिए। सोना उत्खनन के दौरान कभी कभी सोने की बनी हुई वस्तुएं भी मिल जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर समय का प्रभाव बहुत कम परिलक्षित होता है। प्रायः यह देखा गया है कि सोने के आभूषणों एवं अन्य पुरानिधियों की आभा कुछ कम हो जाती है जिसे धुलाई के पाउडर डिटर्जेंट पाउडर अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सांद्र घोल कंसेंट्रेटेड से सफाई करके उसके पूर्व रूप तक पहुंचाया जा सकता है। सोने के पुरावशेषों की सफाई के लिए भी स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी सोने के बने हुए उपकरणों में तांबे अथवा चांदी के अंश मिले रहते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, ये धातुएं या तो जानबूझकर मिलाई गई हो अथवा जिस खदान से सोना प्राप्त किया गया था उसमें चांदी अथवा तांबा का कुछ अंश स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहा हो। यदि सोने की बनी हुई वस्तुओं में चांदी के कारण क्षरण दृष्टिगत हो तो इसे अमोनियम क्लोराइड के प्रयोग के द्वारा दूर करना चाहिए। यदि यह क्षरण तांबे के कारण हो तो उसे फार्मिक एसिड अथवा अमोनियम के घोल के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। कांच की वस्तुएं, अति प्राचीन काल में ही मानव ने कांच बनाने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मानव के पुराने आवास स्थलों एवं सन्निवेशों में कांच की बनी हुई वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। कांच की बनी हुई वस्तुओं के परिरक्षण के संदर्भ में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जा सका जिससे उत्खनन के दौरान मिट्टी के हट जाने के बाद कांच के वास्तविक रंग को बदलने से रोका जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्खनन के दौरान ज्यों ही इस तरह की वस्तुएं उपलब्ध हों, इनका रंगीन छायांकन कर लिया जाए। यदि तुरंत ऐसा न हो सके तो इस वस्तु को उठाकर किसी नमी वाले स्थान पर रख देना चाहिए, जहां पर्याप्त अंधेरा हो। कांच की वस्तुओं पर भी घुलनशील लवण अवशोषित मिलता है, जिसे उस वस्तु को पानी में डालकर नहीं हटाया जा सकता। कभी कभी अघुलनशील लवण भी परिलक्षित होते हैं, जिन्हें हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी कांच की बनी वस्तुएं बहुत ही कमजोर होती हैं, उपलब्ध होती हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की आशंका बनी रहती है कि यांत्रिक प्रक्रिया के कारण, पृष्ठ संख्या 99, वह वस्तु कहीं टूट न जाए। ऐसी दशा में लवण की परत को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कांच की बनी वस्तुओं में टूटने की रेखाएं परिलक्षित होती हैं। ये रेखाएं इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांच काफी कमजोर हो चुका है। उसके ऊपर जमे विदूषण की सफाई के लिए पिन अथवा हल्की छुरी का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह के विलेपन के पहले, जिससे कि उस वस्तु को मजबूत किया जा सके, उसकी सतह पर जमे विदूषण को हटाना आवश्यक है। कांच की वस्तुओं को मजबूत बनाने के लिए पॉलीविनाइल एसीटेट का प्रयोग करना चाहिए अथवा बटवार का प्रयोग किया जा सकता है। सीसा प्राचीन काल में सिक्कों तथा अन्य छोटी वस्तुओं के निर्माण में सीसे लीड का प्रयोग किया जाता था। यह धातु अपेक्षाकृत कमजोर होती है। लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण इसके स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। उत्खनन के दौरान यदि इस वस्तु के बने पुरावशेष उपलब्ध हो तो उन्हें उत्खनन स्थल पर ही साफ करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए। उस स्थल पर अधिक से अधिक यही किया जा सकता है कि मुलायम रूप से उनके ऊपर के विदूषण को हटाया जाए। उन्हें किसी पात्र में बंद करके प्रयोगशाला में भेजने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन पर बाहरी हवा न लगने पाए। शीशे की पुरानिधियों को आवश्यकता अनुसार कास्टिक सोडा एवं गंधक के 2% घोल में डालना चाहिए, फिर खौलाए हुए गुनगुने पानी से धोकर सुखाना चाहिए। इसके बाद विनाइल एसीटेट के 10% घोल का विलेपन कर देना चाहिए। हड्डी तथा हड्डी की बनी वस्तुएं उत्खनन के दौरान मानव एवं पशुओं की हड्डियों तथा हड्डी की बनी हुई वस्तुएं मिलती हैं। सूखी जलवायु के क्षेत्रों में तो इस प्रकार के पुरावशेषों के ऊपर उनके परिवेश का विकृत प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। अन्य परिस्थितियों में इस प्रकार की वस्तुएं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध होती हैं। यही पशुओं की यदि पशुओं की हड्डियां एवं उनसे बनी वस्तुएं मजबूत हो तो साफ पानी से उनकी सफाई की जा सकती है। इस कार्य में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पानी उस वस्तु के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। धोने से पहले हड्डी की बनी वस्तुओं पर परीक्षण कर लेना चाहिए। यदि परीक्षण से यह पता चले कि पानी का प्रभाव अनुकूल नहीं है तो फिर उसे यांत्रिक प्रक्रिया से साफ करना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए यदि लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए उपकरण प्रयोग किए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धातु के उपकरणों से खरोच लगने की संभावना रहती है। हड्डी एवं हड्डी से निर्मित पुरावशेषों को मजबूत बनाने के लिए पॉलीविनाइल एसीटेट के घोल का उपयोग करना चाहिए। हड्डी की बनी वस्तुओं तथा मानव एवं पशुओं की हड्डियों के ऊपर अघुलनशील नमक को हटाने, पृष्ठ संख्या 100 के लिए नाइट्रेट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हड्डी के ही खुल जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। हड्डी तथा हड्डी की बनी वस्तुओं को से नमक का प्रभाव हटाने के लिए एसिटिक एसिड के 15% घोल का प्रयोग करना चाहिए। हाथी दांत की बनी वस्तुएं। प्राचीन काल में लोग हाथी दांत का उपयोग तरह तरह के आभूषणों, खिलौनों एवं उपकरणों के निर्माण के लिए करते थे। उत्खनन के दौरान यदा कदा ऐसी वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। हाथी दांत के बने हुए पुरावशेषों को पानी से साफ करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे वे प्रायः कमजोर हो जाते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार की पुरानिधियों के ऊपर जमी हुई गंदगी को यांत्रिक प्रक्रिया से हटाना चाहिए। इस प्रकार के लिए यदि धातु के बने हुए उपकरणों को उपयोग में लाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मुलायम ठोस एवं लकड़ी तथा प्लास्टिक के बने उपकरण इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त रहते हैं। उत्खनन के दौरान जो ही हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं मिले उनके ऊपर जमी गंदगी को हटाने के लिए उन्हें 2-3 घंटे तक सूखने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। सुखाने की प्रक्रिया के विषय में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे तेज धूप से बचाया जाए। यहाँ जहाँ तक हो सके पुरावशेष के ऊपर छाया की व्यवस्था की जाए ताकि सूखने की प्रक्रिया धीरे धीरे संपन्न हो। यदि उत्खनन के दौरान हाथी दांत निर्मित कोई ऐसा पुरावशेष प्राप्त हो जो अत्यंत कमजोर स्थिति में हो और उसे जिसे मजबूत किए बिना उठाने में दिक्कत हो तो उसे मूल स्थान से उठाने के पूर्व मजबूत करने के लिए ब्रेडाक्रिल 227 अथवा विनामूल के विलेप का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में उस प्रकार के विलेपन का उपयोग प्रयोगशाला के अंदर ही करना चाहिए। हाथी दांत की बनी वस्तुओं के संदर्भ में यह भी देखा गया है कि खुला छोड़ देने पर वे वातावरण के प्रभाव से टूटने लगती हैं। इसलिए उन्हें उठाने का उपक्रम भी यथाशीघ्र करना चाहिए। घुलनशील लवण को हटाने के लिए हाथी दांत के ऊपर घुलनशील नायलान का प्रयोग करना चाहिए और फिर उसे 4-5 बार बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए आश्रित जल में डालना चाहिए। उसके बाद उसे अल्कोहल अथवा ईथर में सुखाना चाहिए। यह समस्त प्रक्रिया 3 मिनट से अधिक समय नहीं होनी चाहिए। कास्ट कागज कपड़ा और भोजपत्र आदि का परिरक्षण। उत्खनन में प्राप्त कास्ट की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए भी अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी में दबे रहने से कास्ट की वस्तुओं में नमी आ जाती है, लेकिन उत्खनन के दौरान उसके ऊपर की मिट्टी हटाने से हवा तथा धूप के लगते ही ये वस्तुएं टूटने एवं चूर्ण चूर्ण होने लगती हैं। इसीलिए कास्ट की बनी हुई वस्तुओं के परिरक्षण के लिए उन्हें बुरादे की परतों के अंदर ढक कर रखा जाता है। इस कार्य के लिए अखबारी कागज और काई का भी उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी पृष्ठ संख्या 101 में अवशोषित लवण के अंश को दूर करने के लिए कागज की लुगदी का भी प्रयोग किया जा सकता है। दीमक निकालने के लिए अजवाइन के सत का प्रयोग करना चाहिए अथवा फिर कोयले का धुआं देना चाहिए। साफ पानी से भलीभांति धोने के बाद विनाइल एसीटेट के 10% घोल का विलेपन करना उचित है। जहां तक हो सके ऐसी वस्तुओं को यथाशीघ्र पुरातत्व प्रयोगशाला में भेजने का प्रबंध करना चाहिए। चमड़े की बनी वस्तुओं की भी इसी प्रकार से रक्षा की जा सकती है। पुराने कपड़े तथा कागज में अवशोषित लवण का अंश दूर करने के लिए उन्हें गीले सोखते वेट ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रख देना चाहिए। ये सोखते धीरे धीरे उनके नमक को अवशोषित कर लेंगे। इसके बाद मुलायम रूस से साफ करके छाया में सुखा लेना चाहिए। भोजपत्र के परिरक्षण के लिए भाप का उपयोग किया जा सकता है। किसी बर्तन में पानी खौलाया जाए और जब पानी खौलने लगे तब उसके मुंह पर तार की एक जाली रखकर उस पर भोजपत्र को केवल 2-3 मिनट के लिए रखना चाहिए। भोजपत्र जब वाष्प से हल्का नम हो जाए तब उसे सोखते के बीच में रख देने से उसका सलोनापन सोखते सोख लेंगे। अंत में विनाइल एसीटेट के 10% घोल का विलेपन कर देना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के परिरक्षण के लिए अत्यंत सूझबूझ एवं सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रसायनों के ज्ञान के साथ ही साथ उनको कितनी मात्रा में और कैसे उपयोग में लाना चाहिए इसकी भी सामान्य जानकारी उत्खाता के लिए अपरिहार्य है। यह सब होते हुए भी उत्खनन क्षेत्र अथवा उसके निकट ही पुरातत्व की रसायन प्रयोगशाला का होना बहुत जरूरी है। पुरातत्व के रसायनज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि वह रसायनशाला से में आने पर विभिन्न पुरावशेषों की एक बार पुनः ठीक से जांच कर ले।